आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा कि भारत अमेरिका माहिदे से एमएसएमईज, कारोबारी अफराद, हुनरमंद वर्करों और सनत के लिए नए मौके पैदा होंगे। सदर जमहूरी के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस हुई। लोकसभा की कार्रवाई मुख्तलिफ मामला पर शोरगुल के दरमियान कई बार मुलतवी की गई। युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है। उन्होंने कहा कि रियासत विकसित भारत 2047 के सिलसिले में अहम रोल अदा करेगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक तसादुम में दो दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान अबू धाबी में अमेरिका की सालिसी के तहत बातचीत का दूसरा दौर हुआ है। दिल्ली में एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में ईशा सिंह और भारतीय खवातीन ने 10 मीटर एयर पिस्टल इंफरादी और टीम मुकाबलों में सोने के तमगे जीते हैं। और जिम्बाब्वे में अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप के सेमीफाइनल में भारत अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज वाजे किया कि भारत सरकार ने भारत अमेरिका तिजारती समझौते में खाद और ज़राअत जैसे हिसास शोबों का पूरा ख्याल रखा है। पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बताया कि ये माहिदा छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारियों, एमएसएमईज, सनतकारों, हुनरमंद कारीगरों और सनतों को नए मौके फराहम करेगा।
यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता को पूर्णतः ध्यान रखा गया है। यह साझेदारी लघु एवं मध्यम उद्यमों, एमएसएमई उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी।
जनाब गोयल ने यह भी वाजह किया कि हुकूमत कई मरतबा इस बात की वजाहत कर चुकी है कि 140 करोड़ भारतीयों की तवानाई की जरूरतों को पूरा करना मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह है। उन्होंने वाजे किया कि सदर ट्रंप ने अमेरिका में भारतीय बरामदात पर टैरिफ को कम करते हुए 18% करने का ऐलान किया है, जो कई हरीफ ममालिक पर अमेरिका की जानिब से आयात करदा महसूल से कम है। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि यह कदम अमरीकी बाजार में भारत की बरामदाती सलाहियत में इजाफा करेगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन की जानिब से शोरगुल के दरमियान आज सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस फिर शुरू हुई। लोकसभा की कार्रवाई में तीसरे दिन भी रखनांदाजी हुई। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने भारत अमेरिका तिजारती माहिदे और चीन के साथ सरहदी मामलात पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। आखिरकार दिन भर के लिए मुलतवी किए जाने से पहले लोकसभा की कार्रवाई 3 मरतबा मुलतवी की गई। राज्यसभा में बहस में हिस्सा लेते हुए मरकजी वजीर और ऐवान के रहनुमा जेपी नड्डा ने कहा कि सदर जमहूरिया की तकरीर में भारत की तरक्की की दास्तान शामिल थी और वो बहुत ज्यादा बायस तहरीक थी। उन्होंने कहा कि उनकी तकरीर अमृतकाल के जज्बे पर मबनी थी और इसमें नरेंद्र मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों को भी उजागर किया गया था। वजीर मौसुफ ने कहा कि सदर जमहूरिया ने सदियों पुरानी सकाफत और रिवायत के बारे में भी बात की।
इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे कल्चर है उसको भी उन्होंने समावेश किया है और साथ ही साथ जो हम डेवलप्ड इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं उस रोड मैप को भी उन्होंने अपने वक्तव्य में मिश्रित करके उन्होंने उसको रखने का प्रयास किया है।
बहस में हिस्सा लेते हुए राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत के तहत समाजी इंसाफ और हम आहंगी की सूरत हाल खराब हुई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि खवातीन बीजेपी के लिए महज एक वोट बैंक बन गई हैं।
राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण पर बहुत बातें हुई, पर सच ये है महिलाएं बीजेपी के लिए केवल वोट बैंक बन के रही है।
बाद में ऐवान बाला की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई।
इस दौरान पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी पर पार्लियामानी जाब्तों की पाबंदी न करते हुए ऐवान की कार्रवाई में रखनांदाजी पर उनकी नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि जनाब गांधी सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर जाब्तों से अलग बोलना चाहते हैं।
हम लोग ने दो दिन इंतजार किया, बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। बोलने मतलब मर्जी से थोड़ी बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ नियम से बोलना पड़ता है।
मणिपुर में सदर राज मंसूख कर दिया गया है और बीजेपी के रुकने असेंबली यमनाम खेमचंद सिंह को आज मणिपुर के वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। वजारत दाखिला ने आज एक नोटिफिकेशन में इस बात का ऐलान किया कि मणिपुर में फौरी तौर पर सदर राज खत्म होता है। 13 फरवरी 2025 को उस वक्त के वजीर आला एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के पेश नज़र रियासत में सदर राज नाफिज कर दिया गया था और मणिपुर कानून साज असेंबली को मुअत्तल सूरत हाल के तहत रखा गया था, जिसकी मुद्दतकार मार्च 2027 तक है। इम्फाल के लोक भवन में हलफ बर्दारी की तकरीब हुई और मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने जनाब खेमचंद को हलफ दिलाया। आज हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान दो दिगर अराकीन असेंबली बीजेपी के नेमचा किबगेन और एनपीएफ के लोसी डिको ने नायब वज़ीरे आला और बीजेपी के रुकन असेंबली गोविंद दास और एनपीपी के रुकन असेंबली कुराइजिम लोकेन ने बतौर वज़ीरा हलफ लिया। इस दौरान मणिपुर कानून साज असेंबली से सेक्रेटेरिएट ने मुतल्ला किया है कि जारी 12वीं मणिपुर कानून साज असेंबली का 7वां इजलास जुमे के रोज होगा। हलफ लेने के बाद वजीर आला ने नामा निगारों से बातचीत करते हुए कहा कि मणिपुर विकसित भारत 2047 के सिलसिले में एक अहम रोल अदा करेगा। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज यमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने नेमचा किबगेन और लोसी दिखो को भी रियासत के नायब वज़ीरे आला की हैसियत से हलफ लेने पर मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम ने एतमाद का इजहार किया कि वो मणिपुर की मजीद तरक्की और उसके बाशिंदों की खुशहाली के लिए जिम्मेदारी से काम करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम की दावत पर 7 और 8 फरवरी को मलेशिया का दौरा करेंगे। वजीर आजम मोदी का मलेशिया का ये तीसरा और अगस्त 2024 में भारत मलेशिया दोतरफा ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकत दारी तक बुलंदी अता करने के बाद ये पहला दौरा है। वजारत खारजा ने कहा कि अपने दौरे के दौरान वजीर आजम मलेशिया के अपने हम मनसब के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम मोदी भारतीय बिरादरी के साथ भी बातचीत करेंगे और सनत और कारोबारी नुमाइंदों से भी तबादले ख्याल करेंगे। 10वां भारत मलेशिया CEO फोरम भी वजीर आजम के दौरे के मौके पर होगा। वजीर आजम का आइंदा दौरा दोनों रहनुमाओं को बाहमी इश्तराक के वसीतर पहलुओं का जायजा लेने का मौका फराहम करेगा। इनमें तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, सिक्योरिटी, बहरी इश्तराक, डिजिटल और इकतसादी टेक्नोलॉजी, तवानाई, सेहत देखभाल, तालीम और सकाफत शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक तसादुम में दो पाकिस्तानी दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनमें जैश ए मोहम्मद तंजीम का एक आला कमांडर शामिल है। ये दहशतगर्द एक कुदरती गुफा के अंदर फंस गए थे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि तकरीबन दोपहर के आसपास जब सिक्योरिटी दस्ते इस गुफा में दाखिल हुए तो कई धमाके सुने गए। हलाक हुए दहशतगर्दों में से एक जैश ए मोहम्मद तंजीम का आला कमांडर रूबानी उर्फ अबू मुआविया था, जो गुज़िश्ता कुछ बरसों से इलाके में सरगर्म था। कल सपहर 4 बजे रामनगर बसंतगढ़ इलाके के बालाई इलाकों में तलाशी की कार्रवाई के दौरान फौज, पुलिस और CRPF के मुश्तरक अहलकारों ने इन दहशतगर्दों का पता लगाया था, जिसके बाद शदीद गोलीबारी शुरू हो गई थी। फौज ने 20 घंटे तवील इस कार्रवाई को किया नाम दिया था और उसने कहा है कि हालिया कार्रवाई हालांकि मुकम्मल हो गई है, लेकिन इलाके में सख्त चौकसी बरती जा रही है। यूक्रेनी और रूसी मुजाकिरातकारों ने आज अबू धाबी में अमरीका की सालिसी वाले मुजाकिरात का दूसरा दौर शुरू किया, जिसका मकसद 4 साल लड़ाई के मुमकिन खात्मे के इम्कान तलाश करना है। इस 2 रोज़ा सैरुखी मीटिंग में यूक्रेनी, रूसी और अमरीकी हुक्काम शरीक हैं, जो दूसरी आलमी जंग के बाद से यूरोप के सबसे बड़े तनाज़े को रोकने की ताज़ा कोशिश का हिस्सा है। इस लड़ाई में अब तक लाखों मारे जा चुके हैं, लाखों लोग नकले मकानी पर मजबूर हुए हैं और मशरक़ी और जुनूबी यूक्रेन में ज़बरदस्त तबाही हुई है। यूक्रेनी फरीक की क़यादत कौमी सलामती और दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी रुस्तम उमेरोव ने की, जबकि रूसी वफद की क़यादत मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ इगोर कोस्तियुकोव ने की। अमेरिका ने मुजाकिरात को मुमकिन बनाने के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर समेत अपने सफीरों को भेजा है। हाल ही में यूक्रेनी शहरों और रूसी ड्रोन और मिजाइलों की ताज़ा बौछार के बाद ये सैरुखी मीटिंग हो रही है। इन हमलों में तवानाई के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया, जिससे मौसम सरमा की सख्त सर्दी में लाखों लोगों को हरारत और बिजली के बगैर रहने पर मजबूर होना पड़ा। مذاکرات کے دوران مشرقی یوکرین کا خطہ مرکزی اہمیت کا حامل رہا۔ ماسکو کا مطالبہ ہے کہ کیو سخت حفاظتی گھیرے والے اور وسائل سے مالا مال علاقوں سمیت ڈونباس سے فوجیں واپس بلا لے اور حملے کے دوران قبضہ کی گئی زمینوں کو روسی زمین کے طور پر تسلیم کر لے۔ دوسری جانب کیو نے یک طرفہ طور پر کسی بھی طرح کا فوجی قدم اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ گورنر سنجے ملہوترا کی قیادت میں بھارتی ریزرو بینک کی 6 ممبران پر مشتمل مالیاتی پالیسی کمیٹی کی سود کی شرحوں پر تبادلہ خیال کے لیے آج 2 ماہ میں ہونے والی میٹنگ کا آغاز ہوا۔ شرحوں پر فیصلے کا جمعے کی صبح اعلان کیا جائے گا۔ زیادہ تر ماہر اقتصادیات کا خیال ہے کہ آر بی آئی موجودہ صورتحال کو جوں کا توں برقرار رکھے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ مرکزی بینک نے 2025 کی شروعات میں ریپو ریٹ میں پہلے ہی 125 بنیادی پوائنٹس کی کمی کی تھی اور افراط زر 4% کے ہدف سے کافی کم رہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے دلی، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، اتراکھنڈ اور بہار میں کل گھنا کوہرا چھائے رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، مغربی اتر پردیش، ذیلی ہمالیہ، مغربی بنگال اور سکم میں آج اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں اگلے 2 روز کے دوران گرج چمک کے ساتھ برف باری کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اولمپک کھلاڑی ایشا سنگھ نے ایشین رائفل اینڈ پسٹل چیمپئن شپ کے پہلے دن آج خواتین کے انفرادی 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ ایشا سنگھ نے نئی دلی کے ڈاکٹر کرنی سنگھ شوٹنگ رینج میں اس شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 21 سالہ ایشا نے دوسروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے فائنل میں 239.8 کے اسکور کے ساتھ سینئر ایشین چیمپئن شپ میں اپنا دوسرا انفرادی سونے کا تمغہ جیتا۔ ایشا نے 2 چینی تائپے نشانے بازوں چینگ یین چنگ اور یوئی اے وین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ چینگ یین چنگ نے 235.4 کے اسکور کے ساتھ چاندی کا، جبکہ یو اے وین نے 217.7 کے اسکور کے ساتھ کانسے کا تمغہ جیتا۔ ایشا، اولمپک میڈل یافتہ منو بھاکڑ اور سروچی سنگھ نے خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل ٹیم مقابلے میں 1726 کے مجموعی اسکور کے ساتھ سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس زمرے میں ویتنام نے چاندی کا اور چینی تائپے نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ دوسری جانب مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل انفرادی زمرے کے فائنل میں عالمی چیمپئن سمراٹ رانا کو کانسے کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ 19 سال سے کم عمر کے ایک روزہ کرکٹ عالمی کپ میں زمبابوے کے ہرارے میں بھارت نے افغانستان کو دوسرے سیمی فائنل میں 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس سے پہلے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے افغانستان نے 50 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 310 رن بنائے۔ جواب میں بھارت نے جیت کا نشانہ 41.1 اوور میں حاصل کر لیا۔ جمعے کے روز فائنل میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ انگلینڈ نے پہلے سبھی فائنل میں سابق چیمپئن آسٹریلیا کو 27 رن سے ہرایا تھا۔ بھارت کی ٹیم ٹورنامنٹ میں اب تک کوئی میچ نہیں ہاری ہے۔ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں بھارت سب سے کامیاب ٹیم رہی، جس نے 5 مرتبہ یہ خطاب جیتا ہے۔ اس کے بعد آسٹریلیا کا نمبر ہے، جس نے 4 بار یہ خطاب اپنے نام کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے راجیہ سبھا میں کہا ہے کہ بھارت امریکہ معاہدے سے ایم ایس ایم ایز، کاروباری افراد، ہنرمند ورکروں اور صنعت کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بحث ہوئی۔ لوک سبھا کی کارروائی مختلف معاملات پر شور و غل کے درمیان کئی بار ملتوی کی گئی۔ یمنام کھیم چند سنگھ نے منی پور کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست وکست بھارت 2047 کے سلسلے میں اہم رول ادا کرے گی۔ جموں کشمیر کے ادھمپور میں ایک تصادم میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان ابوظہبی میں امریکہ کی ثالثی کے تحت بات چیت کا دوسرا دور ہو رہا ہے۔ اور دلی میں ایشیائی رائفل اور پسٹل چیمپئن شپ میں ایشا سنگھ اور بھارتی خواتین نے 10 میٹر ایئر پسٹل انفرادی اور ٹیم مقابلوں میں سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔